भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रभुपाद की। तो मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज के बलराम जयंती के श्रावण पूर्णिमा के परम दिवस पर परम महोत्सव पे मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। तो आज का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। अगले हफ्ते में जन्माष्टमी का उत्सव है। उस उत्सव को अच्छी तरह से मनाने के लिए संपन्न करने के लिए आज का उत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज श्री बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। श्री बलराम जी भक्त के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि भगवान 6 प्रकार के अवतार लेते हैं, हम सब जानते हैं। मनवंतर अवतार, शक्ति आवेश अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार। उसमें एक अवतार है लीला अवतार, जो केवल अपनी लीलाओं को विस्तारित करने के लिए, अपनी लीलाओं का आनंद बढ़ाने के लिए और उसको समृद्ध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और उनका प्रथम अवतार लीला अवतार जो है वो बलराम जी हैं। और वो भगवान के जो आध्यात्मिक जगत है, और जब वो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में अवतरित होता है, विस्तारित होता है, वहीं पर लीलाओं का विस्तार करते हैं। और भौतिक जगत में श्री बलराम जी फिर संकर्षण और नारायण और उसके बाद में महाविष्णु के रूप में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उपयोग करते हैं। तो बलराम जी और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो 6 ऐश्वर्य और 64 गुणों से संपन्न हैं, और बलराम जी भी वैसी तरह से 6 ऐश्वर्य और 64 गुण जो हैं वो उनके अंदर भी हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनका जो अंतर है वो केवल उनके रंग में है और उनके भाव में है। भगवान का रंग जो है वो घनश्याम, यानी कि जो बादल जल से भरा होता है वर्षा करने के लिए, उस मेघ वर्ण के भगवान श्री कृष्ण हैं। और शरद ऋतु का जो बादल है सफ़ेद रंग का, वो रंग बलराम जी का है। तो बलराम जी की गौर कांति है, कृष्ण भगवान की श्याम कांति है। और बलराम जी सेवक भाव में हैं, इसलिए उनको कहते हैं सर्वेटर गॉड हेड, सेवक भगवान। कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम है, भोक्ता भगवान है, और बलराम जी जो हैं वो सेवक भगवान है। हमेशा निरंतर एक ही सोचते रहते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। उनकी सेवा इतनी अनोखी है भगवान की, कि भगवान की सेवा में 5 रसों का वर्णन किया गया है। जब हम अपने बद्ध अवस्था से साधना भक्ति करके प्रगति करते हैं, रागानुग भक्ति पर पहुंच जाते हैं, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति, जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है उस समय रस उत्पन्न होता है। उस रस की भक्ति जो है वो 5 प्रकार की बताई गई। एक है शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा साख्य रस मित्रता, चौथा वात्सल्य रस और पांचवा माधुर्य श्रृंगार रस। तो बलराम जैसे एक अनोखे व्यक्तित्व ऐसे हैं कि वो हर रस में भगवान की सेवा करते हैं। जितने भी जीव हैं इस विश्व में भगवान ने निर्माण किए हैं, वो हर एक जीव का एक भाव होता है, एक स्थाई भाव होता है। अभी हमारे अंदर सारा स्थाई भाव तो लुप्त हो चुका है, माया से पूरा अवरुद्ध हो चुका है, इसलिए हमारे अंदर का जो स्थाई भाव है अभी हम उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का एक मूल स्थाई भाव होता है उसकी आत्मा का, जो जब वो भौतिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वो स्थाई भाव अपने आप स्वयं प्रकट हो जाता है उत्स्फूर्त रूप से। तो तब हम उस भाव का अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक जीव का केवल एक भाव होता है, लेकिन बलराम जी पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वृंदावन में हम बार बार जाते हैं, हमारा हृदय वहाँ पर मोहित होता है, आकर्षित होता है, वो तो पूरा श्री वृंदावन धाम जो है वो सब बलराम का विस्तार है, बलराम जी का विस्तार है। यहाँ तक कि गौलोक वृंदावन भी जो है मूल दिव्य धाम जो है भगवान का, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धाम जो है वो भी बलराम जी का विस्तार है। यहाँ तक कि बलराम जी जो भगवान वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, मुकुट पहनते हैं, वृंदावन में मोर मुकुट पहनते हैं, द्वारका में और रत्नों से भरा हुआ मुकुट पहनते हैं, जितने अलंकार पहनते हैं, कर्ण कुंडल पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उत्तरीय वस्त्र पहनते हैं, जूता पहनते हैं, रथ में बैठते हैं, जितनी भी वस्तुएं भगवान इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ तक कि भगवान की थाली, भगवान का ग्लास, भगवान के जो भी व्यंजन भगवान उपयोग में लाते हैं, वो सारी वस्तुएं केवल एक व्यक्ति का विस्तार है, वो है बलराम जी। ये शांत रस का उनका सेवा है। और ये सेवा ऐसे नहीं कि अभी एक बार बना दिया तो फिर समाप्त हो गया, फिर उनका जो क्रिएशन है, विस्तार है भगवान की सेवा में शांत रस का श्री वृंदावन धाम के रूप में, वो हमेशा विस्तारित होते रहता है। जो जो चीज़ भगवान को ज़रूरत पड़ती है वो भगवान उनको निर्माण करते रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान जिस पर बैठते हैं, जिस आसन पर बैठते हैं, जिस शैया पर सोते हैं, वो सारा बलराम जी का विस्तार। फिर दास रस में वो भगवान की सेवा करते हैं। जैसे भगवान जब जाते हैं गऊ चराने के लिए तो बहुत खेल खेलते हैं, राक्षसों को मारते हैं, फिर भोजन करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, उसके बाद में थोड़े थक जाते हैं और फिर जाके पेड़ के नीचे उनकी जो मूल है, मतलब क्या कहते हैं उसको, रूट्स, उनको तकिया बना के भगवान लेट जाते हैं। तुरंत बलराम जी भाग के आते हैं और उनके श्री चरणों को अपने गोद में लेते हैं और बड़े ही प्रेम से अपनी मुलायम हाथों से उनके मुलायम चरणों को दबाते रहते हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता देते हैं और वो सुंदर दिव्य करकमलों का स्पर्श प्राप्त करके भगवान भी आराम से सो जाते हैं। उनका सेवा भाव है। और साथ साथ में भगवान की साख्य लीलाओं में, गौचारण लीलाओं में और कोई भी लीला में जो उनकी सहायता की जरूरत है वो भगवान बलराम जो है बड़ी तत्परता से करते हैं। साख्य रस में आप जानते हैं भगवान के भगवत्ता को भूलकर भगवान से लड़ते हैं, भगवान से झगड़ते हैं, भगवान से कुश्ती खेलते हैं। हाँ, भगवान का साथ में कोई खेल खेलने के बाद में हार जाते हैं तो भगवान को कंधे पे उठाते हैं, भगवान के कंधे पे बैठ जाते हैं जीत जाने के बाद में। अच्छा, ब्रज का कोई सुंदर सा वन है उसका राउंड ले लेते हैं, हाँ, उनके कंधे पर बैठकर। तो ये साख्य भाव है। साख्य भाव में कोई ऐश्वर्य का लवलेश नहीं है, ओम नमो नारायणाय, ऐसा कोई नहीं है उसके अंदर। उसमें तो गाली देते हैं, हाँ, बुरा भला बोल देते हैं, झगड़ा करते हैं ताकि भगवान का जो साख्य रस का आनंद है उसकी वृद्धि हो। भगवान की ऐसी इच्छा होती है कि ब्रज में कोई ऐश्वर्य भाव लेकर नहीं आए, उनको अच्छा नहीं लगता है वो। हाँ, जब उन्होंने मुंह खोला था और देवकी यशोदा मैया ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करना आरंभ किया था, उनको अच्छा नहीं लगा, तुरंत मुंह बंद कर दिया उन्होंने, हाँ, एकदम हंस पड़े, स्मित हंस किया उन्होंने, सब भूल गई यशोदा माता, हाँ, फिर गले लगाया और फिर अपने स्तन पर स्तनपान करने दिया उनको। गोपियों ने भी जब भी उन्होंने प्रयास किया कि मैं अभी चतुर्भुज नारायण बन जाऊंगा और उनको थोड़ा सा आनंद दूंगा, वो सब लीलाओं से या रासलीला से लुप्त हो गए थे, अंतर्धान हो गए थे और खड़े हो गए प्रविष्ट वन में चार भुजा लेकर। लेकिन राधारानी जब आई और जिस व्याकुलता से राधारानी ने उनको पूछा कि आपने कहीं कन्हैया को देखा है, किस तरफ गया है, तो वो उनके दो हाथ जो ऐसे थे ना वो पिघल गए, खत्म हो गए। वो अपने ऐश्वर्य भाव को स्वयं बना नहीं सके, बना रहना उनके लिए नामुमकिन हो गया और फिर द्विभुजा रूप में आ गए। तो भगवान स्वयं भी नहीं चाहते और जब भी उन्होंने कोशिश किया वो फेल हो गए। वृंदावन धाम का रस ही ऐसा है कि सब प्रेम से भरा हुआ है और वहाँ पर सबसे उस प्रेम की भाव की जो स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण अंग ये है कि भगवान को वहाँ भगवान के रूप में कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि भगवान जूता भी नहीं पहनता। तो साख्य रस की विशेषता यह है, उसी रस को बनाए रखते हुए, उस रस का सार जानते हुए, समझते हुए, उसका जो आनंद है उसको बलराम जी वृद्धि करते। फिर वात्सल्य रस, भगवान के बड़े भाई हैं, यशोदा मैया उनको कहती है देखो बलदेव जी आप कन्हैया के बड़े भाई हैं, जब भी जमुना किनारे खेलते हैं उनके पास रहना, भाई जमुना में गिर न जाए, हाँ थोड़ा स्लो करना, जमुना जी में थोड़ा सा, हाँ जमुना जी में जब भी वो जाएंगे तो शायद वो गिर सकते हैं, एक कंकड़ लग सकते हैं उनको, तो राक्षस हमला कर सकता है उनके ऊपर, तो उनकी आप रक्षा करना। तो हमेशा बलराम जी की एक बड़े भाई की तरह उनको देख रेख करते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कहीं गहरे पानी में तो नहीं जा रहे हैं या ऐसे कुछ नहीं खा रहे हैं। तो उसी भाव में उन्होंने कंप्लेंट किया था माता जी को कि आज उन्होंने माटी खाया है, तो जानते थे माटी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, हाँ तो कंप्लेंट क्या बताएंगे आपको उसके आगे लीला। तो बड़े भाई की तरह वात्सल्य की भी उस भाव में भगवान की सेवा करते हैं। अब श्रृंगार रस की बात आ गई तो लोग और कैसे सेवा कर सकते हो, तो वो अपने विस्तार से एक गोपी बन जाते हैं, उसका नाम है अनंग मंजरी, जो राधा रानी की छोटी बहन है और बड़ी प्रिय है राधा रानी को वो। और जब कृष्ण भगवान रास लीला करते हैं, निकुंज लीला करते हैं, प्राइवेट लीला करते हैं, उसमें अनंग मंजरी जो है बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। तो कैसा अनोखा चीज़ देखो आप, है तो पुरुष महापुरुष मतलब श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो पुरुष भगवान की लीला अवतार हैं, लेकिन फिर भी स्त्री बनकर भगवान को उस रूप में भी दिव्य रूप में आनंद देने का प्रयास करते हैं। स्वकीय भाव ने परकीय भाव जो श्रेष्ठ श्रृंगार रस का अंग है उसमें वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे उनकी सेवकता जो है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे हनुमान जी भी सेवा में बहुत निपुण हैं, लेकिन इनकी जो सेवा भाव है वो पूर्ण शक्ति के साथ में, मतलब जो भी पावर और इन्फ्लुएंस उनके पास में परम भगवान होने के रूप में है वो सबका इस्तेमाल वो केवल भगवान की सेवा में करते हैं। हमारे अंदर भी बहुत अमीर लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, लेकिन शायद हम सभी हमारी जितनी शक्तियाँ हैं उनको भगवान के सेवा में नहीं लगाते। तो बलराम जी इसके एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जो भी उनके पास में है, ऐश्वर्य रूप में कहिए, सुंदरता के रूप में कहिए, यश के रूप में कहिए, कीर्ति के रूप में कहिए, जो भी सिद्धियाँ उनके पास में है विस्तारित होने की, वो सभी वस्तुएँ सभी शक्तियाँ वो केवल भगवान की सेवा में लगाते। और गौर वर्ण है उनका और वो दो अस्त्र धारण करते हैं, शस्त्र वो है गदा और हल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी केवल गदा धारण करते हैं, कभी कभी केवल हल धारण करते हैं, कभी कभी दोनों धारण करते हैं। और गदा चलाने की कला में वो बहुत ही निपुण हैं। उन्होंने दुर्योधन को गदा विद्या सिखाई थी, इसलिए दुर्योधन उस समय का विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदा योद्धा था। यहाँ तक कि भीम से भी अधिक कुशल वो था गदा योद्धा में, स्किल में, कुशलता के अंदर भीम जो है वो बल के रूप में सबसे शक्तिशाली थे और साथ में गदा युद्ध का भी उनका ज्ञान था। लेकिन उस गदा युद्ध की जो सुंदरता थी, जो कुशलता थी, उसमें दुर्योधन को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ बना दिया था। और बलराम जी का एक और एक विशेष भाव ऐसा है कि वो अवधूत भाव में रहते हैं। अवधूत का मतलब क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल, कभी क्या करेंगे इसका भरोसा नहीं है। हाँ भगवान की सेवा में कैसे वो आनंद देते हैं भगवान को, इसका कोई गारंटी नहीं है। किस रूप में, किस क्षण में, किस प्रसंग में वो कैसा बर्ताव करेंगे इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उनका एक ऐसा अवधूत का एक लीला ऐसा है कि वो हमने क्यों सुना है हमारे शिक्षा पाते हुए आध्यात्मिक जीवन में कि हमको चार नियमों का पालन करना चाहिए, हाँ नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन बलराम जी बहुत खूब नशा करते हैं बहुत सुंदर नशा करते हैं, लेकिन हमारे से जो हम लोग इस दुनिया में, इस दुनिया के लोग जो तुच्छ नशा करते हैं, हाँ जिससे हमारी इंद्रियों को शिथिलता प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि इंद्रियां हमारे और शक्ति से विघटित हो जाते हैं। सोमरस भी स्वर्ग लोकों में उसका वर्णन किया गया है, लेकिन सोमरस भी, सोमरस का भी एक गुण है कि वो इंद्रियों को शिथिल नहीं बनाता, इंद्रियों को और भोग लेने के लिए प्रवृत्त बना देता है, लेकिन फिर भी वो भौतिक है क्योंकि वो भोग लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाने की शक्ति रखता है। लेकिन बलराम जी जो है वो वरुण देव की कन्या है, वारुणी, और वो वारुणी जो है वो वृंदावन के बहुत सुंदर पेड़ है, वहाँ पर उसके जो पत्ते हैं उसके अंदर से वो प्रकट होती है, मधु की तरह होती है, हनी, हनी की तरह होती है। और जब बलराम जी लीला करते हैं तो एक्सटसी में, अति आनंद के अनुभव में वो उस पेड़ के पर्णों से वो द्रव्य उत्पन्न होता है और उसको बलराम जी पीते हैं और बहुत ही वो दिव्य उसका स्वाद होता है, और जैसे ही उसको प्राशन करते हैं तो उनकी आंखें जो गोल 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 घूमने लगती हैं और वो बैठ जाते हैं। एक बार उन्होंने जब वो भगवान कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए थे, 2 महीना रहे थे वहाँ पर, हाँ गोपियों को उन्होंने पत्र दिया था भगवान कृष्ण का और बड़ी कुशलता से सांत्वना भी किया था, उनके हृदय को आनंद दिया था, और बीच में उन्होंने जो अपने, उनकी एक विशेष गोपियों का ग्रुप होता है, वो भगवान की गोपियों का बड़ा आदर करते हैं। ऐसे कहा गया कि जब भगवान की गोपियाँ, जो कृष्ण भगवान की गोपियाँ हैं, वो जब चलती हैं तो वो रास्ता बदल के अलग चलते हैं क्योंकि वो भगवान की जो सखियाँ हैं उनका आदर करते हैं, और उनकी एक अलग जूत है गोपियों का, उनके साथ उन्होंने रासलीला का आनंद लिया था राम घाट की जगह पर। तो वहाँ पर वो वारुणी प्रसन्न करके, रासलीला प्रसन्न करने के होने के बाद में थक कर, जो उन्होंने दिव्य ग्लानी आई थी उनको, उस वहाँ बैठ गए और उनका प्रसन्न किया, उनकी आँखें नशे से चूर हो रही थी और वे कदम के पेड़ के पीछे बैठ कर आराम से बैठे थे। उनकी इच्छा हुई कि अभी जमुना जी में स्नान किया जाए, तो उन्होंने जमुना जी को आह्वान किया, हमारे पास आओ अभी हम लोग क्या करते हैं, हम जमुना जी में जाते हैं ना और वहाँ पर जाके इसी उतर के सीढ़ियों में दंडवत करके स्नान करते हैं, लेकिन तो भगवान है ना स्वयं, तो जमुना जी को कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ। तो जमुना जी सोचती है कि नशा किया हुआ आदमी, मैं कैसे उनके पास जाऊँ, हाँ ये कोई मर्यादा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो जमुना जी अपना हल उठाते हैं और हल उठाकर जमुना जी की एक धारा को सहस्त्र धाराओं में विभाजित कर देते हैं। तब जाकर भाग भाग के जमुना जी हाथ जोड़ के हुए उनके सामने आती है, अरे माफ़ करना, हमने आपकी स्थिति को नहीं पहचाना, हमने आपकी सेवा के आह्वान को नहीं स्वीकार किया, हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर जमुना जी वहाँ पर उत्तर दिशा में बहती हुई जो धारा है वो पूरी उल्टी होकर दक्षिण दिशा में आई है और जमुना जी के अंदर बलराम जी ने बड़ा आनंद से स्नान किया है। तो ऐसा अनोखा जो है जिसका हम अंदाज लगा नहीं सकते हैं, ऐसा बर्ताव वो करते हैं, इसलिए उनको अवधूत भी कहते हैं। नित्यानंद के अवतार में, नित्यानंद जी के अवतार में वो श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी इनके स्तन का दूध दुबान करते थे, हाँ वो समझ नहीं सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बलराम जी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि बलराम जी, उनके अवतार नित्यानंद प्रभु, अगर वो कहीं शराब के अड्डे पर भी दिखाई पड़े किसी को तो किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, किसी किसका उद्धार कब करेंगे, किस पर कृपा बरसाएंगे, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। तो इनकी सेवा भाव है कि हमेशा कृष्ण भगवान से वो जुड़े रहते हैं, कोई भी अवतार भगवान का हो उनके साथ में रहते हैं। जैसे त्रेता युग में वो श्री रामचंद्र भगवान के साथ में उन्होंने अवतार लिया सुमित्रा जी के गर्भ से, हाँ और कौशल्या जी के गर्भ से प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया, उस समय भगवान के छोटे भाई के रूप में आए। और जब राम जी का वनवास का समय आया तो इनका कोई इस पर कनेक्शन नहीं था कि उनको भी जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु रामचंद्र को वो शाप के जो वरदान दिया दशरथ महाराज ने कैकेयी को, उसके अंदर राम अंतर्भूत थे, उनको जाना था जंगल में, लेकिन लक्ष्मण जी का इतना प्रेम था कि वो एक क्षण भी भगवान के बिना, भगवान के सान्निध्य के और भगवान की सेवा के बिना रह नहीं सकते, इसलिए वो उनके साथ चले गए। सुमित्रा जी ने उनको बताया, अपने बड़े आदर से माता जी का आशीर्वाद देने गए जाने के पहले, पूछा कि कैसे हम प्रभु रामचंद्र की इस नई अवस्था में सेवा करें। हाँ, आज तक तो राजमहल में रहे, युवराज के रूप में रहे, पूरे ऐश्वर्य के साथ में रहे, आज भी जंगल जाएंगे, जूता भी नहीं पहन सकते हैं, वलकल पहनना है। हाँ, पेड़ की जो त्वचा होती है ना, स्किन, वलकल कहते हैं उसको, उसको पहनना है, कंदमूल खा के जीना है, एक जगह पर रहना नहीं है, कोई अच्छी नदी अच्छा पेड़ देखकर कैसे मैं सेवा करूँ। उन्होंने कहा कि अपने हाथों से उनकी शैया बनाना, अपने स्वयं जाकर कंदमूलों को चुन कर लाना, काट के उनके हाथ में नहीं, हाथ में खिलाने को रखना, उनके अपने हाथों से उनका घर बनाना और कभी रात को सोना नहीं। देखिए बलराम जी का क्या भाव है। तो 14 साल तक लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, दिन भर उनकी सेवा करते थे, अपने हाथ से पत्तों को इकट्ठा करके उनकी कुटी बनाते थे, पर्ण कुटी, जो आज भी उधर राम कुंड के पास में काड़ाराम मंदिर जो है वो पर्ण कुटी का स्थान है, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से उनकी पर्ण कुटी बनाई थी, इतनी कुशलता से पर्णशैया बनाई थी उनको लेटने के लिए। दिन भर उनके लिए फल चुन के लेके आना, लकड़ी काट के लेके आना, पत्ते लेकर आकर उनका बिस्तर बनाना, उनको हवा देना, उनके चरणों को दबाना, ये सारी निम्न सेवा जो वो करते थे। और जब वो शयन करते थे श्री राम जी और सीता मैया, तब ये वीरासन में धनुष को तान कर बैठते थे। कभी आपने किसी ने वीरासन किया होगा तो वीरासन में आदमी सो नहीं सकता है, कितना भी थका होगा तो उसकी पोजिशन ही ऐसी है, और साथ में धनुष ताने हुए चारों दिशाओं में वो निगरानी करते थे रात भर जब तक भगवान शयन कर रहे। और जब भी राक्षस आते थे तो उनका वध करते थे, भगवान को जगाते नहीं थे, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस भाव से उन्होंने 14 साल तक भगवान की सेवा की, निद्रा नहीं हुई उनकी। और उसके बाद में जब ही प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध किया, फिर वो सीता जी को मुक्त करके हुए विमान में बैठकर अयोध्या पहुँचे, उनका राज्याभिषेक हुआ और पहला दरबार चल रहा था, फर्स्ट असेंबली, तो उसमें श्री रामचंद्र भगवान सिंहासन में बैठे हैं, उनके बगल में सीता जी बैठी हैं, तो लक्ष्मण जी जोर से जमाई दे रहे हैं। तो सेनापति जो मंत्रीगण थे वो देख रहे, देखो कैसे इनको शिष्टाचार भी नहीं है। हाँ, पहली सभा है प्रभु रामचंद्र की राजा होने के बाद में, और उनके प्रमुख जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो जमाई दे रहे हैं। तो नारद जी, हाँ कोई और भी जमाई दे रहे शायद आप, ये प्रभु रामचंद्र का दरबार नहीं है। तो नारद मुनि जी बताते हैं, आप लोग जानते नहीं इनकी महिमा और गौरव। 14 साल तक वो भगवान के विषय में चिंतित रहे और सोए नहीं उनकी उनके सेवा में, और आज जब वो देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र सिंहासन में बैठे हैं अयोध्या के राजा के रूप में, हाँ सब कुछ शांति है, रावण का वध हो चुका है, सीता मैया राम जी के साथ में है, सब कुशल मंगल है, तो ही इज रिलैक्स्ड, इसलिए वो जमाई दे रहे हैं। तो जमाई देना भी जो है उनके गौरव का एक अंग है। हाँ, तो ऐसे लक्ष्मण जी उन्होंने बहुत ही निरंतर दिव्य भाव से भगवान की सेवा की, लेकिन कुछ कुछ जगह पर उनको जरा थोड़ा दुख हुआ, छोटा भाई होने के नाते, क्योंकि ये सब राज दरबार होने के बाद में जब कोई धोबी ने कुछ भगवान के पत्नी के बारे में कुछ बताया, तो एक आदर्श राजा के रूप में सीता जी का भगवान ने त्याग किया। बहुत लोग इस कथा को समझते नहीं है कि ये क्या भगवान ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये आदर्श राजा का व्यवहार नहीं है। फिर भी भगवान का जो व्यवहार है वो हर एक कृति उनकी दिव्य है और अर्थपूर्ण है। लेकिन इस कार्य में जब उन्होंने सीता जी का त्याग किया और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उनको भेजने का निर्णय लिया, तो लक्ष्मण जी को बताया कि रथ जोड़ो और आप उनको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आओ। और लक्ष्मण जी को बात पसंद नहीं आई कि भगवान सीता जी का त्याग कर रहे हैं, उनको ये बात ही सहन नहीं हो रही थी कि मेरी माता जो निर्दोष है, निष्कलंक है, परम पवित्र है, परम पावन है, उनकी जो पातिव्रत्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उन पर ये शक किया जा रहा है, मतलब शक नहीं, भगवान नहीं शक कर रहे, लेकिन ये संदेह उत्पन्न किया गया है प्रजा के द्वारा, उसके वजह से श्री रामचंद्र उनका त्याग कर रही है, उनको बाद में ये बात उनको पसंद नहीं आई। लेकिन बड़े भाई का आदेश होने के नाते अपने भावना के विरुद्ध जाकर उनको रथ जोतना पड़ा, सीता जी को उठाना पड़ा, और वो ले जा रहे थे। सीता जी बहुत खुश थी क्योंकि वो तो साध्वी है। हाँ, सोचे थे गर्भावस्था है, साधु का संग मिलेगा, कितना बढ़िया होगा। तो बड़े आनंद में थी वो, और लक्ष्मण जी रथ हाँक रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये सीता जी को समझ में नहीं आया कि क्यों रो रहे हैं। बहुत देर तक रोते हैं, रोते रहे और कहे कि मैं आपको यहाँ केवल घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए ले आ रहा हूँ। तो ये एक दुख की बात थी, उनको सहन नहीं हुई। फिर जब उनका वापस आने का समय हुआ तो उनकी अग्नि परीक्षा करने का निर्णय किया गया। अभी उसका रहस्य यह है कि जो मूल सीता थी उसको अग्निदेव ने अपने आश्रय में लिया था, और जो छाया सीता थी उसको उन्होंने रावण को हरण करने के लिए दे दिया था। हाँ, तपोवन में एक जगह है जहाँ पर वो एक्सचेंज किया गया, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र के आदेश से अग्निदेव प्रकट हो गए, जहाँ पर जो गोदावरी और कपिल नदी एकत्र मिलती है वहाँ पर संगम में अग्निदेव प्रकट हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने सीता देवी को अपने आश्रय में लिया था और छाया सीता को प्रकट करके प्रभु रामचंद्र की सेवा में दिया था। तो ये दिव्य जला का कारण ये था कि जो मूल सीता है उसको प्राप्त करना और छाया सीता है उसको वापस करना। लेकिन लौकिक दृष्टि से प्रजा के सामने निष्कलंक पतिव्रता माता सीता को अग्नि परीक्षा करने का निर्णय किया गया। और इस समय भी जो क्या कहते हैं उसको शरण का मतलब जो लकड़ी बचाने का काम जो है लक्ष्मण जी को दिया गया। बड़े दुखी हुए कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जो मेरे वंदनीय हैं, मेरे हाथ से उनके लिए मेरे को अग्नि की जो क्या कहते हैं उसको अग्नि को व्हाट इज दैट शरण हाँ चिता मुझे बनानी पड़ रही है, इतना दुर्भाग्य है मेरा। और आंखों में अश्रु लेकर उन्होंने चिता सजाई उनकी, उसको अग्नि भी अपने हाथ से दिया, और सीता देवी उनकी आंखों के सामने वो उतने रुदन कर रहे थे, आक्रंदन कर रहे थे, उनके सामने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। फिर सबके सामने उनका गौरव सिद्ध हुआ, उनकी निष्कलंकता भी सिद्ध हुई, तब आनंद हुआ। लेकिन जो कष्ट सीता जी को हुआ वो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने निर्णय कर लिया कि अगली बार जब भी आएंगे बड़े भाई बनकर आएंगे। ये सब आज्ञा पालन का जो काम है उसमें कभी कभी दुख भी होता है, इसलिए हम बड़े भाई होकर उनको आज्ञा देंगे। इसलिए अगले अवतार में वो बलराम जी बड़े भाई बनकर आएंगे। तो इनके जन्म की कहानी इस प्रकार से है, हम सब जानते हैं कि कंस को आकाशवाणी से पता चला कि देवकी के आठवें गर्भ से उनका वध होने वाला है। तो उन्होंने देवकी को और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, और फिर छह बालकों का जन्म हुआ एक के बाद एक के बाद एक, और छह ही बालकों का कंस ने बड़ी क्रूरता से पत्थर पर पटक पटक कर उनको जान से मार डाला। और सातवें गर्भ के रूप में अनंत शेष बलराम जी के जो विस्तार हैं, जिनके हजारों मुख हैं, हजार मुख हैं। एक चीज़ बताने को भूल गया मैं, भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं, अनंत शेष के रूप में भी करते हैं। हाँ, गौलोक धाम में करते हैं, भाव वृंदावन में भी करते हैं, और कारण उदक सागर गर्भोदक सागर के अंदर वो बड़ी बहुत ही सुंदर और दिव्य भगवान की शैया बनते हैं। और वो शैया के साथ साथ में भगवान का छत्र भी बनते हैं, हजार मुखों से भगवान को छाया देते हैं और उनमें भगवान आराम से लेटते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करते हैं। तो ये अनंत शेष ऐश्वर्य भाव के जो भगवान के विस्तार हैं वो अनंत शेष देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं गर्भावस्था में। तो भगवान कृष्ण भगवान माया देवी दुर्गा देवी को पुकारते हैं और कहते हैं कि तुम इनका संकर्षण करो, उनको संकर्षित करके जो रोहिणी का गर्भ है उसमें विस्थापित करो। अभी रोहिणी देवी जो है वो भगवान बलराम जी की चिरंतन माता है, इटर्नल मदर। तो उनके गर्भ में भी बलराम जी उपस्थित हैं, जो मूल ओरिजिनल बलराम जी हैं वो रोहिणी के गर्भ में विराजमान हैं। और रोहिणी जब गर्भावस्था में आई तो कंस का ये आतंक देखते हुए रोहिणी ने चुपचाप उनको नंद महाराज के घर में भेज दिया गोकुल में। तब नंद महाराज और विश्वानु महाराज, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी इसलिए अपना नंदगांव और विश्वानुपुर यानी बरसाना को छोड़कर दोनों ये जमुना जी के किनारे, बहुत आवाज़ हो रहा है, जमुना जी के किनारे स्थिर हो गए। तो इनका ये भाव था कि जमुना जी की कृपा से हमें संतान प्राप्त हो सकती है, इसलिए उन्होंने जमुना जी के पास में रावल में विश्वानु महाराज और गोकुल में नंद महाराज स्थापन हो गए, उन्होंने अपना राज्य बनाया। और तब उसी समय पर कंस के तरफ से, कंस के राज्य से, मथुरा से नंद वसुदेव जी ने अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी जी को गर्भावस्था में सुरक्षा के लिए वहाँ भेज दिया। तो वो गर्भावस्था में थी तो माया देवी के शक्ति से, भगवान के आदेश के अनुसार माया देवी ने उस गर्भ को वहाँ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। तो आचार्य बताते हैं कि जो अनंत शेष भगवान बलराम के विस्तार थे वो मूल बलराम के स्वरूप में एक रूप हो गए, यानी कि रोहिणी के गर्भ में भी बलराम जी थे और देवकी के गर्भ में भी थे। इस तरह से वो देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। तो उस समय ऐसा खबर मिली कि देवकी का जो है वो गर्भ नष्ट हो गया, मिसकैरेज हो गया। तो कंस ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और उसके बाद में भगवान कृष्ण ने उन अपने आप को देवकी के गर्भ में स्थापित किया। सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गए वो, वसुदेव जी ने बड़े दिव्य आनंद का अनुभव किया, और फिर वो देवकी के हृदय में प्रकट हुए, वहाँ से फिर वहाँ से वो देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। और शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि जो छह पुत्र जो हैं जिनका देवकी के गर्भ से वध किया गया, वो हिरण्यकश्यपु को छह पुत्र थे जिनको श्राप दिया गया था, और वो छह पुत्र जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो षड रिपु हैं हमारे आत्मा के, उनके प्रतिनिधि हैं वो। तो उस रूप में उनको नष्ट किया गया। और जो देवकी का हृदय है उसको हमारे हृदय की उपमा तुलना की गई है, जो हमारे हृदय की तरह है। जब तक ये छह रिपु, छह शत्रु जो है काम, क्रोध आदि, ये नष्ट नहीं होते हैं तब तक हमारे हृदय में भगवान प्रकट होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और यहाँ तक ये कथा समाप्त नहीं होती है, वो छठ रिपु समाप्त होने के बाद भी बलराम जी का आविर्भाव, उनकी कृपा, उनका आश्रय वहाँ प्राप्त होना जरूरी है। क्योंकि तो बलराम जी जितने भी अनर्थ हमारे हृदय में, ये तो छह प्रमुख अनर्थ हैं, और भी अनंत अनर्थ हमारे हृदय में होते हैं जो हमारी भक्ति में बाधा लाते हैं। जो भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो प्रकट होने के रास्ते में ये अनंत जो रिपु हमारे हैं, शत्रु हैं, ये बाधा डालते हैं। और इनको नष्ट किए बिना जो हृदय में विराजमान परमात्मा गर्भ में भगवान हैं उनका हम अनुभूति नहीं कर सकते। तो बलराम जी आते हैं और वो सारे अनर्थों को नष्ट कर देते हैं और भगवान के प्रकट होने के लिए ये जो स्थिति है वो योग्य बना देते हैं। तो बलराम जी विराजमान हुए देवकी के गर्भ में, फिर भगवान कृष्ण के आने के लिए योग्य स्थिति उत्पन्न हुई। उसी तरह से बलराम जी की ऐसी पोजीशन है कि वो बल का प्रतिनिधि है, वो बल का स्रोत है। बल दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक बल, लौकिक बल, और एक आध्यात्मिक बल, लौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक बल। भौतिक बल से हम शरीर की शक्ति बढ़ा सकते हैं, जो हमारा कोई प्रभाव है, हाँ पुलिस चौकी में भी है, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के ऑफिस में भी है, और बहुत सारे बिजनेसमैन के अंदर भी है, ये भी एक प्रभाव की शक्ति होती है। और अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, इससे हम कोई निर्माण कर सकते हैं, कोई किसी ने बिल्डिंग बनाया, किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ये सारी शक्तियाँ जो है स्थूल से लेकर सूक्ष्म, सारी भौतिक शक्तियाँ भी शक्तियाँ होती है, उसका उगम भी बलराम जी हैं। और एक होती है आध्यात्मिक शक्ति, काम को ना कहना, क्रोध को रोकना, लोभ को नष्ट करना, द्वेष से मुक्त रहना, आने वाले भौतिक भोगों को ना कहना, उसे नो। गुरु महाराज कहते हैं हमेशा कि जब हम किसी भौतिक प्रलोभनों को ना कहते हैं तो हमारे आध्यात्मिक स्नायु मजबूत हो जाते हैं। When we resist, we think that we are only resisting. What is the achievement? When we look back and see the muscles are strong. अगर कोई बहुत बड़ा वजन है, हमको रोकना है उसको, तो केवल रोकने रोकने से ही, एक ही जगह पर, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है वो, लेकिन उस जगह पर रोकने से ही हमारे स्नायु जो है मजबूत हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति बलराम जी के पैर से उत्पन्न होती है और वहीं से हमको प्राप्त होती है। इसलिए बलराम जी का जो पोजिशन है वो आदि गुरु का है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो आदि गुरु हैं। और जब तक बलराम जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है तब तक हम भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत में भी हम सुनते हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है तब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी नहीं प्राप्त हो सकती है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में हमने देखा है, जब तक उनको चैतन्य प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने उनके शीश पर अपना चरण रखा और कहा कि बहुत जल्द आपको कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, और उनके तुरंत बाद उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और संग प्राप्त हुआ और सेवा प्राप्त हुई। तो ये हम समझना ज़रूरी है कि हमारे इस्कॉन में, अलग संप्रदायों में, विश्व भर में, अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के गुरु हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए। जो भी हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है वो हमारे गुरु हैं, चाहे पथ प्रदर्शक गुरु हो, हाँ वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, जो हमको ज्ञान देते हैं, प्रेरणा देते हैं अपने उदाहरण से, अपनी वाचा से, अपने ज्ञान से, और हमारे दीक्षा गुरु हैं जो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोग भगवान के धाम तक पहुँचे, जिनको जो हम सबको वो भगवान की सेवा में स्थित करते हैं, चाहे हम भौतिक जगत में देहधारी अवस्था में यहाँ पर विराजमान हैं, फिर भी हमारे इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, और अंतिमतः हमारी सेल्फ इन हमारे स्वयं को भगवान के धाम तक पहुँचाने में मदद करते हैं। वो सारे गुरु जो हैं वो भगवान बलराम से शक्ति प्राप्त करते हैं, सबके स्रोत हैं वो। अंतिमतः जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं, वो सब उनके प्रतिनिधि हैं, सारी कृपा उनकी ओर से आती है। इसलिए बलराम जी का मैंने शुरू से कहा था कि जन्माष्टमी महोत्सव को यशस्वी रूप में संपन्न करने के लिए और भगवान कृपा कृष्ण की यशस्वी रूप से कृपा प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर बलराम जी का ये जो अवतरण है उसको समझना और उस उत्सव को संपन्न करना अच्छे सही भाव से बहुत ज़रूरी है। तो आगे जब भगवान का फिर बलराम जी का जन्म हुआ श्रावण महीने के शुद्ध पूर्णिमा के दिन, और आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो गोकुल में एक जगह है जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर का जो स्थान है उस जगह पर रोहिणी ने बलराम जी को जन्म दिया था, पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह, आज चंद्र ग्रहण है हा? लेकिन एनीवेज, तो उसके कुछ ही दिन के बाद में श्रावण वद्य अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और बहुत खुशियों की लहरें ब्रज में फैलाई, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी का जन्म हुआ। तो वसुदेव ने नंद महाराज से मुलाकात की और उनको नंद महाराज को बताया कि हम गर्ग मुनि को भेजेंगे, और गर्ग मुनि आकर हमारे ये दो बालक आपके जो हैं उनका संस्करण करेंगे। अभी वसुदेव जी को पता है कि दोनों मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन नंद महाराज को पता है कि बलराम जी जो है वो वसुदेव के पुत्र हैं और ये कृष्ण जो है मेरे पुत्र हैं। तो जब वसुदेव ने उनसे बातें की तो इस रहस्य को रहस्य बनाए के रखा, क्योंकि जब यशोदा जी प्रसूति के ग्लानी में थी, भगवान कृष्ण का जो देवी हैं बहिरंगा शक्ति प्रकट हुई यशोदा के गर्भ से, तो किसी को ध्यान नहीं रहा बीच रात के समय, तो यशोदा जी सो गई थी, सब गोकुल में सब लोग सो रहे थे, उस बीच रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने आदेश किया कि आप हमें जमुना जी से पार लेकर गोकुल में ले जाओ और नंद महाराज के घर में छोड़ के आओ। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को वहाँ रखा और कन्या रत्न को उठाकर फिर कारागृह में लेके आए। तो जब उनकी निद्रा खुली तो लगा कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, तो इसी रहस्य को बता के रखा। इसमें कई कारण हैं, इसमें एक कारण ये है कि कंस को पता न लगे, क्योंकि ब्रजवास सब वो सिंपल लोग हैं, हाँ इनोसेंट हैं, निष्पाप हैं, तो वो बात वो फैलाना नहीं चाहते थे कि जन्म हुआ है कारागृह में लेकिन उनको गोकुल में छोड़ के आए हैं। फिर भी खबर पहुँच ही जाती है कंस के पास में, तो गर्ग मुनि को जब भेजते हैं तो इसी गुप्तता को बनाए रखते हैं, और गर्ग मुनि आते हैं और गर्ग मुनि अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझते हैं, फिर भी वो बताते नहीं कि इतना भाग्यवान क्यों समझ रहे हैं। और वो कहते हैं नंद महाराज की उनकी चर्चा होती है और गर्ग मुनि को बताते हैं कि अगर हमने इनका जन्म का जो उत्सव है अगर बड़े उत्साह से हम मनाएंगे तो तुरंत ही मथुरा में खबर फैल जाएगी कि नंद बाबा के घर में कोई जन्म हुआ है बालक का, उसके उपलक्ष में बड़ा उत्सव मनाया गया। तो नंद बाबा की बात जस्ती है कि हाँ भाई बात है, कृष्ण बलराम की सुरक्षा के लिए ये बड़ा, क्योंकि उनको पता था कि कंस बड़ा आतंकवादी है, बड़ा पापी है, क्रूर कर्मा है, और उन्हें पहले भी वसुदेव देवकी को बहुत अत्याचार किया है, जेल में बंद कर दिया है और बालकों को बड़ी क्रूरता से मार डाला है, तो उनके अत्याचार के बारे में उनको खबर थी। अभी तक कृष्ण के ऊपर कोई हमला आतंक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव की उसको जानकारी थी, इसलिए तुरंत बांध जाते हैं और चुनते हैं कि हम गौशाला में भगवान का ये जो ना संस्कार विधि है उसको मनाएंगे। अभी देखो गौशाला का जो स्थान जो है, ये चुनने में भी उनकी बड़ी चतुरता है और गौशाला का जो महत्व है, गौरव है, इसमें प्रकट होता है। ऐसे कहा गया है कि जहाँ पर गौशाला होती है वहाँ पर कोई पाप नहीं टिकता है। ये एक बहुत सुंदर बात मैंने कल पढ़ी, प्रभुपाद से इन द काउ पेन देयर इज नो सिन, सारे पाप वहाँ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गौ माता का ऐसा महत्व है, ऐसी महत्ता है कि उनको स्पर्श करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी भी आप जाइए गाय के पीठ पर हाथ घुमाइए, सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ, किसी भी अंग को गाय के हाथ लगाइए, तुरंत पाप से मुक्ति हो जाएगी। जन्म जन्मांतर के अनंत पाप केवल गाय के स्पर्श से नष्ट होती है। गाय हमें स्पर्श करेगी या हम उन्हें स्पर्श करेंगे। फिर गाय का जो गोबर है, हाँ, गोमूत्र है, दूध, दही, ये कोई भी वस्तु प्रकट होती है गाय के शरीर से, उसको भी आप स्पर्श करेंगे तो भी पाप मुक्त हो जाएंगे। और ब्रज का भाग ही यही है। ब्रज की व्याख्या एक प्रकार की ऐसी है कि जहां पर गाय निर्भय होकर विहार करती है उस भूमि को ब्रज कहते हैं। कल 15 अगस्त का दिन था ना, हमारे अगर हम वो जो वंदे मातरम और जनगण मन इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी यही वर्णन आया है, जो शरीर देश नदियों के वनों के समृद्धता से युक्त है, हाँ, सुफलाम सुजलाम, और जहाँ पर गाय यानी सारे पशु निर्भय होकर विहार करते हैं, कोई भय नहीं उनके मन में कत्तल होने की या मृत्यु की हमारे द्वारा, वो भारत भूमि है। भारत यानी कि भा यानी कृष्ण और राधा का जो प्रेम है उसको भा कहते हैं, और रत मतलब उसमें रत रहने वाला जो देश है उसको भारत देश के नाम से जानते हैं। हाँ, बड़ी इंस्पायरिंग व्याख्या है जो हमने सुनी थी ब्रजवासियों से। जिस देश में सब लोग श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम में रत रहते हैं उसको भारत देश कहते हैं, और उसमें सब गायें जो है वो निर्भय होकर व्यवहार करती है, उनके थन जो है वो निर्भयता की वजह से और कृष्ण भगवान के अतुलनीय प्रेम की वजह से जमीन को स्पर्श करते हैं, और प्रेम होने की वजह से उसमें हमेशा जैसे माता के मन में बालक का विचार आता है तो दूध टपकता है स्तन से, वैसे गाय के स्तनों से निरंतर दूध की धारा बहती रहती है। इसलिए सारी ब्रजभूमि जो है वो हमेशा गिली रहा करती थी, क्योंकि सारी जो अनंत गायें थी वो कृष्ण भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर आंखों से आंसू बहते थे और दूध जो थन थे उनके दूध बहता था उसके अंदर, मक्खन की तरह मुलायम भूमि रज हुआ करती थी और हमेशा इस प्रेम से भरे हुए दुग्ध से गिली रहा करती थी। ये है ब्रजभूमि का व्याख्या। तो गौशाला में सारी जो वस्तुएं हैं प्रचुर मात्रा में रहते हैं, हाँ, इसलिए उन्होंने गौशाला को चुना। और तीसरा कारण ये भी है कि भगवान को गाय बहुत प्रिय है, वो गाय के सान्निध्य में रहते हैं, उनका सारा बचपन गाय की गौशाला में निकला हुआ है, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कैसा चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे भाइयों को भी नहीं बताएंगे, इतनी गुप्तता रखनी। उनके नंद महाराज के चार भाई थे, दो बड़े और दो छोटे, और बीच वाले नंद महाराज थे, और बीच के पुत्र तीसरे नंबर के होने पर भी इनके गुण इतने श्रेष्ठ थे, इनकी योग्यता इतनी श्रेष्ठ थी, उपनंद जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने उनको राजा बना दिया नंदगांव का। तो ये उन्होंने अपने भाइयों को भी न कहने का निर्णय लिया गर्ग मुनि के सलाह से, और फिर बहुत ही गिने चुने लोग वहाँ पर एकत्र हुए और उन्होंने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तो जब सबसे पहले बलराम जी का नामकरण संस्कार किया तो उन्होंने बताया कि ये जो बलराम जी हैं, ये जो बड़े भाई हैं कृष्ण भगवान के, ये सब बल के स्रोत होंगे, जितने भी बल इस दुनिया में जानते हैं हम उसका उगम ये होंगे, और उनके अनंत शक्तियों का प्रभाव वो आगे जाकर लीलाओं में दिखाएंगे, इनके अंदर अनंत शक्ति है इसलिए इनका नाम बलदेव होगा। अपने सुंदर सुंदर लीलाओं से और केलियों से वो सबको प्रसन्नता देंगे, इसलिए उनका नाम रमण भी होगा या राम भी होगा। और उन्होंने बताया कि यदुकुल और ब्रजवासी नंदन महाराज का जो कुल है और यदुकुल जो द्वारका का है, इनके अंदर जोड़ने वाली ये व्यक्ति है, दोनों कुलों को वो जोड़ देगी, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी कहा गया है। अभी उन्होंने ऐसा उनको बताया नहीं जानबूझ के कि इनका देवकी के गर्भ से संकर्षण किया गया है और ये रोहिणी के गर्भ में विराजमान हुए हैं। ये रहस्य को छुपाए रखते हुए वो कह रहे उतना बताते हैं कि दो कुलों के बीच में आकर्षण, प्रेम, दिव्य संबंध उत्पन्न करने के लिए ये कारणीभूत होंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी कहा गया। इसलिए वो ओरिजिनल संकर्षण है। इस तरह से उनका नामकरण विधि किया। फिर अगला उन्होंने भगवान के बारे में गौरव किया, वो तो हम जन्माष्टमी की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से भगवान का नामकरण विधि हो गया। और गर्ग मुनि को नंद महाराज ने बहुत डोनेशन दिया, दक्षिणा दी और उनकी पूजा की, उनका धन्यवाद किया, अनंत लाखों धन्यवाद दिया उनको कि आप जैसे महामुनि हमारे घर में पधारे हैं। हम गृहस्थ लोग हैं, हम सब लोग माया में लिप्त रहते हैं, जीवन के उद्देश्य को भूलते नहीं हैं, भूल जाते हैं, और हमारे जो पुत्र हैं, परिवार है, धन दौलत है, हमारे जो दिन के कार्यकलाप हैं, बच्चों का हित है, इसमें ही हमारा जीवन हम बिताते हैं और परम लक्ष्य की ओर जो भी करना है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, और आप जैसे लोग अनायास ही बड़ी कृपा से हमारे घर में आते हैं। तो चक्रवर्ती बात बताते हैं कि क्या जरूरत थी गर्ग मुनि को वहाँ पर आने के, ग्रस्तों के घर में, लेकिन वो जानते हैं कि साधारण ग्रस्त नहीं है। वो कहते हैं, वो जानते हैं कि ये जो क्या नाम था उनका, धरा और द्रोण, द्रोण और धरा, जिन्होंने 12,000 साल तक केवल पेड़ से गिरने वाले पत्तों को पाकर तपस्या की थी, ध्यान किया था भगवान नारायण का, और द्रोण और धरा को भगवान नारायण ने दर्शन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे, आप जैसा हमको पुत्र चाहिए। तो नारायण जी ने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। और यथावकाश द्रोण नंद महाराज बने और धरा जो है यशोदा मैया बनी। इस सब इतिहास को गर्ग मुनि जानते थे, इसलिए गृहस्थ होने पर भी उनके घर में बड़ी उत्सुकता से वो गए, और ये भी जानते थे, उनका ऐसा वर्णन किया गया है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं उनके बारे में कि उनको त्रिकाल का ज्ञान था, आगे क्या क्या होने वाला है ये सब उनको पता था, पहले क्या हुआ पता था, अभी क्या हो रहा है वो पता था, और आगे क्या हुआ सब उनको पता था। इसलिए उन्होंने एक नाम भगवान कृष्ण का गिरधारी भी रख दिया उधर ही उसी समय, क्योंकि जानते थे कि आगे जाकर ये गिरिराज गोवर्धन को उठाने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा गौरव करते हैं चक्रवर्ती बाद उनका। और फिर उनके अंदर एक गृहस्थ की जो नम्रता होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित कृष्ण सेवक गृहस्थ की जो नम्रता होनी चाहिए, उसका भी नंद महाराज अपने बर्ताव में व्यक्त करते हैं उनका भावना। और फिर गर्ग मुनि अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हैं कि ऐसे पिता जिनके घर में भगवान स्वयं विराजमान हैं, उनके आंगन में लीला करने वाले हैं, ऐसे घर में मुझे जाने का मौका मिला, ये ब्राह्मण कर्म करने का भाग्य है मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए अपने आप के भाग्य को धन्यवाद देते हुए गर्ग मुनि वहाँ से निकल गए, और नंद महाराज अपने गर्ग मुनि का संग प्राप्त करने के भाग्य को सोचते हुए रात भर सोचते रहे कि कितना बड़ा भाग्य है मेरा कि ये सबसे श्रेष्ठ गर्ग मुनि जो है वो मेरे घर में आकर मेरे बच्चों का नामकरण विधि उन्होंने किया है। तो उसके बाद में यथावकाश भगवान जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं, पहले रेंगते हैं, तो रेंगने के समय पर आप जानते हैं कि उनके दोनों हाथ दोनों पैर पृथ्वी पर रखते हुए वो चल रहे हैं कृष्ण बलराम, और इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाज्जंतम आख्यापयंतम। सत्तरद मुनि कहते हैं कि गोकुल वासियों को कृष्ण बलराम ने अपनी नन्नी नन्नी लीलाओं के साथ में आनंद के सागर में डुबो दिया। हाँ, जब देवकी और रोहिणी जी देखती थी उनको रेंगते हुए, उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती थी इनकी लीलाओं को देखते हुए। और वो क्या करते थे, घर में बड़ी गौशाला थी उनके, और गौशाला में हमेशा गोमूत्र, गोबर, ये सारी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में पवित्र करने वाली वस्तुएं वहाँ पर विराजमान रहा करती थी। तो ये रेंगते हुए धीरे धीरे गौशाला में जाते थे। अभी वहाँ पर एक बढ़िया मिक्सचर बना हुआ है गोबर का और गोमूत्र का, सब जगह पे आप जाएंगे तो आपको हमेशा उसकी सुंदर सुगंध जो है वो आपको पसंद करेगी। हाँ, बाड़ा में जाइए और या वेणु माधुरी में जाइए, जैसे ही गौशाला में जाएंगे आपको बड़ा आनंद होगा, बड़ी दिव्य सुगंध आती है गोबर की और गोमूत्र की। तो ये बालक वहाँ पर रेंगते हुए जाते थे। अभी माता ने उनको बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, कुमकुम लगाया है, चंदन लगाया है, अगरू लगाया है, माला पहनाई है, सुंदर पीताम्बर पहनाया है और बलराम जी को उन्होंने नीले रंग की धोती पहनी हुई है। हाँ, इसका भी एक रहस्य है क्योंकि भगवान नीले रंग के हैं, उनकी याद हमेशा बनी रहे इसलिए वो स्वयं नीला रंग की धोती धारण करते हैं। राधा रानी भी हमेशा नीला वस्त्र धारण करती है। सुनील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या, नील रंग जो है वो धारण किया हुआ है, पीताम्बर भगवान ने धारण किया है और इतना सुंदर अलंकार और श्रृंगार करने के बाद में ये दोनों गौशाला में जा रहे हैं। तो गौशाला में जा रहे हैं तो क्या होता है कि देखते हैं नन्हे नन्हे जो बछड़े हैं यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, आप देखते हैं कैसे सुंदर दौड़ते हैं, दोनों पैरों पर कुत्ते इधर उधर गोल गोल घूमते हैं, आगे जाते पीछे जाते हैं माता के आगे पीछे, तो उनको बड़ा आकर्षण होता है, उनका बड़ा मोह लगता है, उनको बड़े मोहक बछड़ों के पीछे भागते हैं रेंगते हुए और उनके पूंछ को पकड़ते हैं। हाँ, बड़ी अच्छी लंबी ऐसा समथिंग न्यू यू नो कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल, तो उनको पकड़ देते हैं दोनों भैया। तभी रेंगने की अवस्था में आप देखते हैं ना, जो जब बालक चलने को सीखते हैं ना तो अपने टेबल को कुर्सी को ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वैसे ही आगे आगे हिलते हैं और कुर्सी को आगे लेके जाते हैं, तो वैसे ही वो कुर्सी पूंछ को पकड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। जैसे खड़े होते हैं तो उनको खींचना पड़ता है ना थोड़ी पूंछ को। हाँ, जैसे ही इस पूंछ को खींच कर खड़े हो जाते हैं वो जो बेचरा है वो बिसर जाता है और भागने लगता है डर के मारे, और ये भी डर जाते हैं खुद स्वयं और उनको पूंछ को छोड़ते नहीं है ताकि हम गिर जाएंगे, और पकड़ते हैं तो वापस गिर जाते हैं, पेट के बल पर जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर बढ़िया सा सुंदर मिश्रण बना के रखा हुआ है गोबर और गोमूत्र का, और सारे गौशाला में ये सब जो बछड़े हैं भागते हैं उसके पूंछ को पकड़े हुए कृष्ण और बलराम हैं और अपने पेट के ऊपर स्केटिंग करते हैं पूरे गौशाला में, बहुत सुंदर। और रोहिणी जी वहाँ भाग भाग के आती हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं आनंद के, बोले यशोदा दीदी जल्दी आ जाओ देखो कन्हैया और बलराम जी क्या कर रहे हैं, और भाग भाग के आते हैं, देखते हैं दोनों तो आँख भर के हृदय भर के उनका दर्शन करते हैं और ये डरे हुए हैं छोड़ने रहे हैं। फिर जाके उनका डर कम करने के लिए दोनों माताएं अंदर जाती हैं, अपने अपने बालकों को उनके पूंछ को छोड़ देती हैं और आप देखिए उनका जो श्रृंगार है कुमकुम चंदन अगुरु सब अभी गोबर गोमूत्र से मिक्स हो गया है, हाथ में पैर में मुंह में नाक में सब जगह पर बढ़िया मिश्रण हो गया है और उस अवस्था में बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही सर्व सौंदर्य संपन्न है वो, उस पर श्रृंगार किया है माता ने बड़े वात्सल्य प्रेम से और ऊपर से उनके अंदर अभी गोबर और गोमूत्र का मिश्रण लगा हुआ है, तो उनको प्रेम से अपने गोद में लेती हैं। हाँ, और तुरंत छाती में स्तनपान कराने लगती हैं, जब स्तनपान करते हैं कराते हैं बड़े आनंद से आँख बंद करके भगवान स्तनपान करते हैं, बीच में आँख खोलते हैं और हंसते हैं माता को देखकर, बलराम जी रोहिणी को देख के हंसते हैं और कृष्ण भगवान यशोदा को देख के हंस रहे हैं, फिर आँख बंद करके पी रहे हैं फिर हंस रहे हैं। तो हंस रहे हैं क्योंकि मुख कमल जो है खुल रहे हैं और नन्हे नन्हे दांत जो हैं प्रकाशमान दैदीप्यमान तारों की तरह दिख रहे हैं और वो देखकर दोनों माताओं को बड़ी खुशी हो रही है। फिर और जगह पर खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार मैया उनको उठा रही हैं, ऐसे करके करते अनंत लीलाओं में वो ब्रजवासियों को डुबा देते हैं सागरों में आनंद में। फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बछड़ों का भार जो है उनको दे देते हैं। अभी बछड़ों का भार देने के पहले वो जब चलने लगते हैं तो तुरंत उनके उम्र के जो बालक हैं वो उनको मिलते हैं, मतलब सुदामा है, सुदामा है, उज्ज्वल है, मधुमंगल है, ये जितने भगवान के सखा हैं सब वो उनको मिल जाते हैं, बाकी सखा भी जो गोपियों के बालक हैं वो सब उनको मिल जाते हैं। तो ये जैसे ही झुंड बनता है तो उनकी नटखट लीलाएँ आरंभ होती हैं और क्या करते हैं गोपियों के घर में जाते हैं और वहाँ से माखन चोरी करना आरंभ कर देते हैं। तो ये बड़ी सुंदर यहाँ पर वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं कि किस तरह से बलराम जी जब जाते हैं कृष्ण भगवान को लेकर तो उसकी एक लीला ऐसी है कि एक बार वो माखन चुराने गए, माखन बहुत चुराते थे वो, अपनी माता जो है उनकी यशोदा मैया उनके पास में 900,000 गाय थी खुद की, और उसमें से 100 गाय उन्होंने ऐसी बना के रखी थी, उनका नाम था पद्मगंधा, उनको विशेष रूप का घास जड़ी बूटियाँ वो खिलाते थे, और बड़ी प्रक्रिया है वो, कैसे उन्होंने 900,000 से 100 गायें उत्पन्न की, बड़ी लंबी टेक्निकल प्रोसेस है उसके अंदर, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे हम। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 100 जिनके शरीर से भी कमल की खुशबू आ रही है ऐसी गायें, उनका दूध जिसके दूध से भी कमल की खुशबू आ रही है, वो दूध से मैया दही जमाती थी और उसका मंथन करके जो उसका सार मक्खन के रूप में निकलता था वो अधिक तीव्रता से कमल की खुशबू देने वाला था, और वो कमल जो कमल का खुशबू देने वाला जो मक्खन था वो उनको कृष्ण बलराम को खिलाती थी यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपने घड़े उनको घर में ही उनको दिव्य मक्खन का आस्वाद मिलता था, उनका पेट भरा रहता था मक्खन से तृप्त होकर। फिर भी गोपियाँ बताती हैं बाद में कंप्लेंट में, इनको भूख रहती नहीं है लेकिन उनको चोरी करने का बड़ा शौक, हाँ मक्खन को ऑफिशियली खाने का उनको दिल नहीं कर रहा है, हम उनको देती भी हैं तो खाते नहीं हैं लेकिन चोरी ज़रूर करते हैं क्योंकि वो भगवान हैं और साथ साथ में वो सभी भक्तों के हृदय के मालिक भी हैं, और जैसी प्रेम करने वाली गोपियाँ जब अपना घर में मक्खन बनाती हैं तो उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए ये माखन चुराने वहाँ जाते हैं, तो जाते हैं तो रोज चोरी करते हैं कभी, फिर गोपियाँ उनको छुपा के रखती हैं, अंधेरी जगह पर रखते हैं और छत पे लटका के रखते हैं, झूले में रखते हैं, तो वो जाकर कोई टेबल कुर्सी कोई उखल कोई गोपियों कोई गोपालों का कंधा जो भी मिलेगा उसको इस्तेमाल करके चढ़ के उसको तोड़ते थे, और उससे भी जब ऊंचा हुआ करता था तो शार्प ऑब्जेक्ट लेकर उसको होल बनाते थे और क्या करते थे अपने भक्तों अपने जो गोपाल हैं उनको कहते थे कि आप सब लोग आ करके खड़े रहो, आपको लाइन से मैं उस धारा के नीचे ले जाऊंगा आ करके एक एक करके ग्वाल बाल जो बड़े भोले भाले बेचारे ग्वाल बाल उनको लेके उधर होल करते थे, वो गिरता था सब लोग लाइन से आगे बढ़ते थे पेट भर के और कभी कभी वहाँ से कूदते थे वो मटका लेकर और अपने हाथों से ग्वाल वालों को अपने दिव्य कर कमलों में बड़े प्रेम से उनको मुंह में मक्खन खिलाया करते, तो गोपियाँ ये छुप छुप के आनंद देखा करते थे, और फिर ये सब आनंद लेने के बाद में बड़े आंखों में आंसू लेकर आनंद लेते हैं, और ये सब समाप्त होने के बाद उनको पकड़ने जाते थे, इसी कारण कि भगवान का हमको स्पर्श हो, भगवान को आलिंगन करने का मौका मिले, लेकिन भगवान भाग जाते थे भगवान तो बड़े चोर शिरोमणि हैं, हाँ चोर चूड़ामणि, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो एक बार क्या हुआ, बरसाने में घेवर वन में उन सब गोपियाँ बहुत त्रस्त हो गए, ये भी रोज का ये चक्कर है ना कहीं हम लोग रहते हैं सब जगह पर मक्खन चोरी करते हैं, नहीं मिलेगा मक्खन तो क्या करते हैं, हमारे जो पलने में छोटे छोटे बालक हैं उनको चिमटा निकालते हैं, हाँ और बच्चों को सोए वो उठाकर रुलाते थे और बच्चे नहीं मिलेंगे तो हमारे घर में मूत्र विसर्जन करते हैं, थूकते भी हैं, इस प्रकार के इलाके में दिखाते हैं कि परेशान हो रहे हैं लेकिन दिन में आनंद हो रहा है हमको, तो क्या करते हैं अभी ऐसा हम लोग करेंगे इन बालकों को पकड़ेंगे ऐसे तरह से इस जिंदगी भर का सबक सिखाएंगे, तो क्या करते हैं एक कमरे में बढ़िया सा बढ़िया सुगंधित मक्खन जो है दही दूध सब टांग देते हैं अंधेरे कमरे में, सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब नीचे ग्राउंड लेवल पे जितने भी हैं बच्चों के हाइट के हिसाब से सब बंद कर देते हैं और केवल एक ही दरवाज़ा खुला रखते हैं और सारे झाड़ियाँ जो हैं उसमें जाकर स्वयं छुप जाती हैं, जैसे भी इस गेट से प्रवेश करेंगे हम चारों ओर से उनको झपट पड़ेंगे, वी विल जंप ऑन देम, और उनको पकड़ कर रंगे हाथ हमने मैया के पास ले जाएंगे। तो जैसे आते हैं देखते अरे बढ़िया सीन है एकदम, हाँ कोई भी नहीं है इसमें, एक ही दरवाज़ा खुला है सब बंद है कोई दिखने वाला भी नहीं है, मतलब खिड़की से दरवाजे से, और अच्छे अच्छे मक्खन की खुशबू आ रही है टंगे हुए हैं, वाह सब लोग मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, कृष्ण बलराम सुदामा मधुमंगल श्रीदामा उज्ज्वल रक्तक सब लोग आते हैं, बड़े प्रेम से योजना बनाते हैं कि खड़े हो जा मैं चढ़ूंगा उसके ऊपर करके सब मक्खन उतार लेते हैं, और ऐसे खाने ही वाले हैं तो सारी गोपियाँ जो है उन्होंने सब चुन के रखा है कि इसको मैं पकड़ूंगी इसको तुम पकड़ना 1-to-1 बना के रखा है पूरा प्लान तो कोई छूटने का चांस नहीं, सभी गोपियों के नाम सब गोपियों के साथ लगे हुए हैं कि आप सबको पकड़ने वाले, हट सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान बहुत चतुर हैं, वो सबके हाथों से अपने छुड़ाकर बलराम जी और ग्वाल बाल जो है भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं? दरवाजे पर बंद करके रखा है, क्योंकि आया दरवाजा बंद कर दिया, एक खिड़की ऊपर खुली रहती है। सब लोग फटाफट अपने आप कंधे में चढ़कर चढ़ के खिड़की में हाथ पांव रखकर सब निकल जाते हैं, भाग के आंखों के सामने सब लोग भाग के चले जाते हैं। और वो भाग रही गोपियां उनको पकड़ने के, लेकिन वो पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैर पकड़ के भी छोड़ के भी वो खिड़की से निकल के ऊपर से भाग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति अटक जाता है, वो बड़ा साइज का है, वो सांदीपनि का पुत्र है, मधुमंगल, उसका पेट बड़ा है बहुत, वो उसका पेट जो है वो खिड़की में अटक जाता है। खिड़की के बाहर से कृष्ण बलराम उज्जवल को खींच रहे हैं और नीचे से सब गोपियां उनका पैर खींच रहे हैं। अभी गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण वो नीचे की तरह होता है, ऊपर की तरह नहीं होता है। इसलिए कृष्ण बलराम की जो शक्ति है उससे ज्यादा गोपियों का प्रभाव होता है और वो एंड में मधुमंगल को नीचे खींच लेते हैं और मधुमंगल को पीटते हैं, गुलचा लगाते हैं, मारते हैं पीटे से आगे से। बहुत रोता है मधुमंगल बेचारा, बहुत रोता है। कि आप तुम अभी तुमको पकड़ के रखेंगे, तुम्हारे हिसाब से सब लोगों को यहाँ पर लाएंगे बराबर से आपको पकड़ के। तो कृष्णा बलराम पुकार रहे हैं, वो बोले मधुमंगल जल्दी आ जाओ। अरे कैसे आ जाओ, मैं तो नीचे से खिड़की से कूद गया नीचे अभी। तो सब लोग भाग जाते हैं, उनकी आवाज़ भी धीमी धीमी हो जाती है, मधुमंगल ये कृष्ण बलराम को पुकार रहे हैं। और कुछ गोपियां ताली बजा रही हैं, कुछ गुलचा लगा रही हैं, कुछ तमाचा लगा रही हैं, सर पे मार रही हैं, कुछ चोटी खींच रही है उसकी। फिर उसको बड़ा गुस्सा आता है, मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, मैं शाप दे दूंगा आपको, आप मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तुरंत गोपियां बेचारी भोली भाली शांत हो जाती, ब्राह्मण का बालक है, शाप देगा, जनेऊ को लेके एक धागा तोड़ देगा, पता नहीं क्या बोलेगा उसके बाद। तो सब लोग एकदम नम्र हो जाते, हमने बड़ी गलती की है, हाँ पकड़ना था कृष्ण बलराम को, ब्राह्मण के बालक को पकड़ लिया। तो फिर कहते हैं कि अभी इनको संतुष्ट करना चाहिए। बोला कि महाराज जी बताइए क्या करें आपके लिए। तो मधुमंगल बोला अच्छा मौका है, उनको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, लड्डू मिठाई संदेश पेड़ा वाह सब लिस्ट बना देते हैं, तो तुम लड्डू लेके आओ, तुम बर्फी लेके आओ, तुम रबड़ी लेके आओ, तुम संदेश लेके आओ, तुम मक्खन लेके आओ, जो ऊपर रखा था उसी टाइप का मक्खन नीचे लेके आओ, सारा जो भी अपना डिजायर लिस्ट है, हाँ विश लिस्ट, उसको पूरा कर देते हैं। और गोपियां घर जाती हैं, सब लोग अपने हाथ से सब व्यंजन बनाती हैं, तब तक उसको आराम से रखती हैं, दो गोपियां पंखा देती हैं उनको। और फिर आते हैं सब, उनको बड़ा लंबा चौड़ा भोग लगाते हैं। और उधर घेवर बन में घेवर कुंड है, हाँ उधर एक ऐसा अभी भी एक आसन ऐसा बना कर रखा है बहुत सुंदर, वहाँ पर उनको विराजमान किया था और उनकी पूजा की है उन गोपियों ने और उनको भोग लगाया। सभी आनंद से भोग भी लेकर अच्छी तरह से मिठाई लबड़ी संदेश लड्डू खाकर दक्षिणा लेकर फिर ये आराम से लौटते। उनका घर भी वही पास में है, आप आगे जाएंगे नंदगांव के रास्ते पर तो राइट साइड में एक पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम है, वहीं पर उनका निवास है, वहाँ चले जाते हैं। तो ये रोज के अभी देखो उद्देश्य कुछ और था और हुआ कुछ और, तो पराभव की भावना है ना कि हम हार गए, अरे पकड़ नहीं सके उनको। तो फिर एक बार और योजना करते हैं कि ये कृष्ण बलराम को हम लोग अच्छी तरह पकड़ेंगे, तो घंटी लगा देते एक बार ऊपर। और जैसे ही घंटी को बताते हैं, देखो जैसे आएंगे तुम बच जाना, जैसे ही बजेंगे तुम हम सब भाग के आके उनको पकड़ेंगे। तो फिर आते कृष्ण बलराम, देखते हैं घंटी लगी हुई है, बोला अच्छी योजना है इनकी। घंटी को बोलते हैं, घंटी देखो ऐसा है कि जब मैं तो मैं मक्खन खाऊंगा ना, तुम बजना नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको मक्खन खिलाएंगे लेकिन आप बजना नहीं बिल्कुल प्लीज़। बोला हाँ हम तो सेविका हैं आपकी, आप तो जगत के नाथ हैं, आप विश्वनाथ हैं और हम आपके लिए आपके आगे आगे बाहर नहीं हैं, हम जरूर बिल्कुल नहीं बजेंगे। तो बात में सब लोग अच्छी तरह से चढ़ते हैं, मक्खन निकालते हैं और जैसे ही मक्खन में ऐसे हाथ डालकर मुंह में लगाने का क्षण आता है, तुरंत घंटी बज जाती है। और जैसे घंटी बजती है सब गोपियां भाग के कृष्ण को पकड़ लेती हैं और कृष्ण भगवान को पकड़ते ही भगवान बोलते अरे घंटी तू बजे कैसे, मैंने आपको कहा था कि नहीं बजना है आपको। भगवान आपके लिए ही मर्यादा बना के रखी है कि जब भी आप भोजन करते हैं हमें बजने का अधिकार आदेश आपने दिया हुआ है, हमने आपकी मर्यादा को कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसलिए हम बज गए क्योंकि आप जब भी ऐसे आपने कहा था मक्खन लेंगे तब नहीं बजना तो हम नहीं बजी, जब मक्खन खाने लगे तो हमने बजाया अपने आप को। तो गोपियाँ बहुत खुश हुए उस दिन की हाथ में डायरेक्टली कृष्ण बलराम को पकड़ा हुआ है, चलो अभी हम आपको रंगे हाथ ले जाएंगे, क्योंकि उसके पहले वो जा चुके हैं। गोपियाँ जाती हैं यशोदा मैया के पास में, कंप्लेंट करती हैं कि हमारे घर में आके बच्चों को झूठा लगाते हैं, हम मूत्र विसर्जन करते हैं और कहाँ कहाँ से चोरी करते हैं, अंधेरे में उनके अलंकार जो उनसे प्रकाश आता है और उनसे वो ढूंढ लेते हैं मक्खन चोरी करते हैं, आप उनको अलंकार उतार दो। फिर सोचते हैं अरे अलंकार उतार के क्या लाभ है, इनके शरीर से भी कोई तेज निकलता है, तो पहले बोलते अलंकार उतार दो, मैया बोलते हाँ उतार देंगे अलंकार, फिर खुद मत उतारना क्या फ़ायदा है, क्योंकि शरीर से उनके उतनी आवाज निकलती है, वो ढूंढ निकालते हैं सब जगह से। ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन कंप्लेंट करने में एक बहुत बड़ा सीन है, हम लोग यहाँ सुन रहे हैं लेकिन सीन कैसा है, यशोदा मैया यहाँ खड़ी है और कृष्ण बलराम वहाँ बैठे हैं ऐसे बैठे सुन रहे हैं। ना देखो इतनी शरारत करते हैं और कितने निष्पाप बालक के रूप में बैठे हैं, देखो कृष्ण बलराम दोनों भाई कैसे बैठे हैं, जैसे कि इनके इनमें से इनकी तरफ से ये अपराध नहीं हो सकता नहीं है, ऐसे आपको लग रहा है लेकिन ये सब करते हैं, तो हंस रहे हैं। और यशोदा मैया यहाँ खड़ी है, ऐसे खड़ी जगह हमारे बालक में कंप्लेंट हो रहा है, तो वो सुन रही है कंप्लेंट और सब लोग कंप्लेंट उनको कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको, ये उनका विशेष आते हैं उसके लिए, वो जब भी वो माखन चोरी करके चले जाते हैं तो ये विरह में आ जाती है, उनको दुख होता है कि अरे कभी भगवान आएंगे, तो भगवान को देखने के बहाने आती है और उनको ढूंढते रहते हैं, जब वो नहीं रहते तो उनको ढूंढते रहते हैं और हो तो उनको देखते हुए माता को कंप्लेंट कर रहे हैं, माता यहाँ सुन रही है देख उनको रहे हैं। तो फिर ये कई बार कंप्लेंट होती है तो माता कहते हैं कि तुम लोग हमेशा आते हो और कंप्लेंट करते हो लेकिन कभी प्रूफ तो लेके आया करो, हाँ कभी कभी हमको बताया करो कि इन्होंने माखन चुराया है, रंगे हाथ पकड़ो इनको। तो इस बार उन्होंने रंगे हाथ उनको पकड़ लिया है, फिर क्या करते हैं कृष्ण भगवान को एक हाथ में, बलराम जी को दूसरे हाथ में, उज्जवल को रक्तक को सबको पकड़े हुए जा रहे हैं, अभी एक पूरे झुंड को ले जाएंगे कि सारे साथी हैं उनके सब मिलकर चोरी करते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं और सभी गोपियां लाइन में खड़ी हैं, हाँ ब्रज की गलियों में तालियां बजा रहे हैं, अच्छा हुआ आज कन्हैया अच्छा हुआ, सबके घर में जाके सबको तंग करते हो, आज मैया बड़े अच्छी तरह से पीटेगी आपको। तो जिसका हाथ कृष्ण भगवान का हाथ जिसने पकड़ा है उसको भगवान बोलते हैं अरे गोपी ये मेरी कलाई जो है ना ये कितनी नरम है कितनी नाजुक है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना कस के पकड़ा है तुमने इसको, थोड़ा सा थोड़ा धीरे तो पकड़ा करो, हाँ चलो पकड़ा है तुमने मुझे मैया के पास ले जा रहे हो कोई बात नहीं ले जाओ, लेकिन दर्द हो रहा है मुझे, तो थोड़ा सा ढीला करती है, अभी भी बहुत टाइट पकड़ा है कस के पकड़ा है, थोड़ा अभी काफ़ी देर तक इस हाथ को पकड़ा है, थोड़ा हाथ अभी थोड़ा चेंज कर दो, नहीं चेंज करेंगे हम। तो उसमें से वो जो गोपी है उसका जो देवर है वो भी लाइन में खड़ा है उधर, हंस रहा है देख रहा है सब कुछ, तो उसको इशारा करते हैं मतलब तू भी जरा हमारे लाइन में आ जा, और फिर बोलते गोपी जरा हाथ तो बदली कर दे, तो फिर उसको दया आती है अरे जब पकड़ तो लिया है दंड भी होगा पीटेगा भी आ जाके तो हाथ बदलने में क्या खर्च है। तो जैसे ही वो हाथ अभी वो क्या है ना सब गोपियाँ बड़े आनंद में है एकदम, तो आज हमने तो विजय प्राप्त कर लिया, कृष्ण भगवान को पकड़ा है बलराम जी को पकड़ा है और आज हम हमारी जो कंप्लेंट हमेशा दर्ज नहीं हुआ करती थी हमेशा, आज हम माता को बताएंगे ये तुम्हारा कन्हैया ये तुम्हारा बलदेव ये इसको हम पकड़ के लेके, हाथों में माखन है ये हमारे घर का माखन है मुंह में माखन मंगा हुआ है अभी आप बोलो क्या करना है। तो इस खुशी में है ना वो अभी तो घर पहुंचे नहीं है, तो बड़े खुशी से बिना देखे हुए उसका हाथ बदली कर देते हैं और कृष्ण भगवान आराम से अपने फ्रेंड का हाथ जो है उनके हाथ में देते हैं और पीछे से खसकते हैं। उसके पहले मैं एक बात बताना भूल गया, उनको शर्म लगती है, वो बोलते सब गोपियाँ हंस रही हैं चलो आपका जो चुन्नी है ना उससे हमारा जरा मुंह ढक लो, मुझे बड़ी शर्म आ रही है सब गोपियाँ हंस रही हैं हमको देख के। उसके बाद की ये बात है, तो पहले अपने दोस्त के सर पे वो डाल देते हैं पहला चुन्नी और फिर हाथ बदली कर देते हैं, तो गोपी बड़ी खुश है कह रहे मैं कृष्ण भगवान को लेके जा रही हूँ, पीछे से भगवान खिसकते हैं और चले जाते हैं अपने घर में। बोले मैया बड़ी भूख लगी है मक्खन खिलाओ, बहुत भूख लगी है बहुत देर से मैं भूखा हूँ, तो बड़े मैया प्रेम से मक्खन लेके आती हैं खिलाती हैं, अपना बैठ के आराम से खा रहे हैं। कुछ देर के बाद में यशोदा मैया हम आ रहे हैं कन्हैया को लेके आ रहे हैं बलराम जी को लेके आ रहे हैं। बोले अरे अन्याय तो घर बैठा है, मक्खन खा रहा है। तो आते खिड़की में, क्या हुआ सखी, क्या हुआ? बोले आज तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लेके आए। अच्छा ठीक है, तो भगवान भारत है, मैया क्या शोर मच रहा है? कौन चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ है? देखो कुछ सखिया बोले कि तुमको पकड़ के लेके आ रहे, तो भी हंसते हैं और अपना माखन खाना चालू करते हैं। जोर जोर से आती हैं, हाँ चुन्नी ओढ़ के, बोले ये लो, ये तुम्हारा कन्हैया और ये तुम्हारे बलदेव। कन्हैया को आगे करते हैं, चुन्नी उठाते हैं, तो उसी गोपी का देवर। नशीदा मैया बहुत डांटती है उनको, हाँ अभी तुम तुम्हारे देवर को लेके आ रही हो, कल तुम्हारे पति को लेके आएंगे, लगे तुम्हारा मेरा बालक है। ऐसे कई बार इन्होंने लीला किया है मक्खन चोरी का। तो ये एक बार ऐसे भी हुआ है कि वो एक्चुअली कृष्ण भगवान को पकड़ती है और मैया के पास लेके आती है, तभी कृष्ण भगवान बोलते हैं उनको, मेरे को मत लेके जाना, देखो मैं ऐसे शरारत करूँगा ना कि तुम्हारी ही बहुत हंसी हो जाएगी, मत ले जाना मुझे, आप छोड़ दो मुझे, आप कोई बात नहीं, मैंने कई बार मक्खन चुराया है, आप छोड़ सकते हो मुझे, छोड़ दो मुझे, आप नहीं छोड़ेंगे आपको। बोले ठीक है, हम आपको ऐसे सबक सिखाएंगे कि आप याद रखेंगे। तो वहाँ जाकर उस गोपी का पति बन जाते हैं, अपने पति का हाथ लेकर आती है, ये देखो तुम्हारे कन्हैया आगे हो। और फिर ये चले जाते हैं शर्मिंदा होकर, और फिर वो जाते हैं खेत में, तो भगवान आकर मिलते हैं, मैंने कहा था ना छोड़ दो मुझे, आप नहीं सुना आपने? ऐसी चटपटी लीला भगवान और बलराम जी वृंदावन में करते हैं। तो उसके बाद में एक खेल खेल में कृष्ण भगवान, बहुत लीलाएं हैं भगवान कृष्ण बलराम साथ में। तो उसके बाद में उनको बछड़ों को बाहर दिया गया उनकी कुमार अवस्था में, तो वो लेके जाया शुरू कर दिया उन्होंने जाने का। तो एक बार खेल खेल में कृष्ण बलराम, दो पार्टियां हुई और बलराम जी की पार्टी हार गई और कृष्ण भगवान ने माटी खाई, और माटी खाने का उनका जो लीला है, तो बड़ा रहस्य ये है कि जिस माटी पर हमारी गायें चलती हैं और जिस माटी पर हमारी गायों का दुग्ध हमेशा सिंचा रहता है, और जिस माटी पर सारे मेरे मित्र जो हैं, ग्वाल बाल, गोपियाँ, शुदा, आनंद महाराज, सभी मेरे प्रिय जन जो हैं वो चलते हैं, वो माटी को प्राप्त करने के लिए वो माटी खाते हैं अपने भक्तों की कृपा प्रेम का अनुभव करने के लिए। तो बलराम जी घर में आकर कंप्लेंट करते हैं कि मैया आज कृष्ण ने माटी खाई है। तो वो कहते हैं नहीं, आज हमने इनको गेम में हराया है, इसलिए उनको गुस्सा है मन में, वो खेल खेल में बड़े गुस्सा हुए थे, उनको पनिशमेंट भी हुआ, हमको लेकर घूमना पड़ा उनको, इसलिए वो आज नाराज़ हो गए, इसलिए आपके पास कंप्लेंट कर रहे हैं। तो बलराम जी तो नहीं नहीं मैया, इसके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, ये बीमार पड़ सकता है, मैंने देखा है माटी खाते हुए। तो मैया कहते कोई भैंस की ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपका मुँह खोल के देखेंगे। बोले देखो कोई बात नहीं, सत्य को क्या धरना है, देख लो, मुँह खोल लेते हैं। और जैसे मुँह खोलते हैं, भगवान का पूरा निर्माण जो है, सारा भगवान का सृष्टि का निर्माण जो है आध्यात्मिक और भौतिक, उसको दिखाई पड़ता है। और बड़ी अचंभित होती है माता, अरे मैं क्या देख रही हूँ, ये तो स्वयं नारायण है, सृष्टि के रचयिता हैं, जिसकी मैंने पूजा की थी और अभी भी करती हूँ, दक्ष विष्णु की पूजा करती हूँ, वो स्वयं नारायण स्वरूप मेरे बालक हैं और मैं समझ रही हूँ कि मेरा पुत्र है, मैंने कितनी बार डांटा है इसको, कितनी बार दंड दिया है, कितनी बार उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, सूचना दिया है, ऑर्डर दिया है, ये मैंने गलत किया है। तो वो हाथ जोड़कर तुरंत प्रार्थना करने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि अपने आप को भी उसके मुँह में झांकते हुए देखती है, ये भी देखती है कि मेरे स्तन में दुग्धपान कर रहे हैं, सारी अवस्था को देखते हैं। तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि वो ब्रज भाव से छोड़कर अभी ऐश्वर्य भाव में आ रही है, प्रार्थना के भाव में आ रही है, तुरंत भगवान अपना मुंह बंद कर देते हैं, उसमें तहस करते हैं। तो इस तरह से अभी 10 बज रहे हैं, तो बलराम जी के लीला अनंत हैं, दोपहर को 3:30 बजे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, 3:30 5 तक, हाँ तो उसके बाद में भगवान का अभिषेक होगा और 7:30 से 9 तक फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। श्री बलदेव भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की, थाई गौर प्रेमानंदे।